नमो आयिर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सव पावपणासनो मंगलानं च सव्येषिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् पंच परमिष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जैन शासन निर्ग्रंथों का शासन है। जैन शासन निर्ग्रंथों का शासन, निर्ग्रंथ यानी परिग्रह मुक्त दिगंबर दशा, अंतरंग से भी दिगंबर और बहिरंग से भी दिगंबर, इस प्रकार केवल जो आत्म साधना में तत्पर रहते हैं और अपनी ही आत्मा को परमात्मा बनने का पूरा प्रयत्न जो करते रहते हैं उनका शासन। संसारी प्राणी अनादिकाल से परिग्रह में रच बचा हुआ है, उसको आदत पड़ गई है, उसको परिग्रह से लगन है। जितना परिग्रह से लगन है उतना आत्म तत्व से लगन नहीं है। बस यही कमजोरी है, यही कमी है, संसारी प्राणी संसार में भटक रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, जन्म और मरण के चक्र में परिभ्रमणशील बस इसी कारण से है। ये क्या चाहता है पूछा जाए तो यही पता चलता है, ये पर को ही चाहता है, स्व को भूला हुआ है, स्व की ओर और उसका चिंतन बिल्कुल नहीं है। अपनी आत्मा को वह पहचान नहीं पा रहा है, आत्म तत्व को वह देख नहीं पा रहा है, उसका चिंतन नहीं कर पा रहा है। जो दिखता है उसके पीछे भागता है, जो नहीं दिखता वह क्या नहीं दिखता, हम अपने को ही नहीं दिखते, हमारी आत्मा अपने को नहीं दिख रहा है, इसलिए बाहर भागना हो रहा है। बाहर को देखना और बाहर भागते 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 उसके पीछे भागना, हिरण को जब प्यास लगती है तो वह पानी के पीछे भागता है। प्यास को बुझाने ही तो पानी आवश्यक है, तो पानी को ढूंढता है, वो कहीं भी नहीं मिल रहा है, दूर दृष्टिपात करता है, अब कहां मिलेगा, तो दूर पानी दिख जाता है, लेकिन पानी नहीं होता हुआ। मृग मरीचिका, वो मरीचिका होती है, मृग जाल होता है, उसको देखता है वहां पर तालाब जैसा लग रहा है, वहां मुझे पानी मिलेगा। और भीषण गर्मी में, भीषण धूप के भीतर वह मृग दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, पानी को ढूंढता रहता है दौड़ दौड़ करके, और जितना दौड़ता है उतनी ही प्यास और बढ़ती जाती है। पानी चाहिए है तो पानी कहाँ होता है इसका ज्ञान, सही सही ज्ञान अगर मृग को हो जाए, और जो दिख रहा है जिसके पीछे वह भाग रहा है वो क्या है इसका ज्ञान हो जाए, तो शायद मृग कभी भी उस जाल के पीछे भागेगा नहीं, उसकी सही पहचान नहीं है इसलिए उसके पीछे भागता है। हमको भी ऐसा ही हुआ है, हमको भी ये पर क्या है इसकी पहचान नहीं हो पाई है, और हम जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं सब सुख के लिए कर रहे हैं, पर में सुख दिख रहा है, असली सुख क्या है, पर में है क्या स्व में है, इसकी पहचान है ही नहीं, इसलिए हम भाग रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। लेकिन पर में अगर सुख होता तो शाश्वत समय के लिए, चिर समय के लिए हमें आज तक मिलना चाहिए था, किंतु वह मिल नहीं रहा है। पर यानी जड़ वस्तु, मूर्त जो आंखों से दिखता है, मूर्त ये दिखता है कि नहीं, ये दिखता है, ये मूर्त है। हवा, हवा भी मूर्त ही है, अमूर्त नहीं है। स्पर्शनेन्द्रिय से दिखता है क्या नहीं, स्पर्शनेन्द्रिय से गोचर होता है क्या नहीं, जो इंद्रियों के पकड़ में आ जाए वो सब मूर्त है। हाँ, और जो इंद्रिय के पकड़ का बाहर है वो अमूर्त है, इंद्रिय के पकड़ का बाहर कौन सा है, छह द्रव्य हैं। इंद्रिय के पकड़ में आने वाले कितने द्रव्य हैं और इंद्रिय के पकड़ से बाहर कितने द्रव्य हैं, ये विचार करो। जीव, जीव पकड़ में आता है, जीव का शरीर तो आ रहा है, आपको किसी ने आपको किसी कोई पकड़ता है तो शरीर को ही पकड़ पाता है, क्या आत्मा को पकड़ पाता है, आत्मा दिखता है नहीं दिखता, आत्मा जिसमें है वो दिख रहा है पर आत्मा नहीं दिख रही, आत्मा पकड़ में नहीं आ रही, आत्मा अमूर्त है, शरीर मूर्त है, पकड़ में आ रहा है, शरीर पकड़ में आ रहा है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव पकड़ में नहीं आता, जीव का शरीर पर्याय पकड़ में आता है। पुद्गल द्रव्य आता है पकड़ में, लेकिन कुछ हद तक पकड़ में आता है, कुछ हद तक पकड़ में आने का मतलब इंद्रियों के द्वारा, कुछ हद तक पुद्गल परमाणु पकड़ में आता है, उसकी भी एक सीमा है, मर्यादा है, उसके बाहर के पुद्गल परमाणु पकड़ में नहीं आते। देखो ये कैसा है, पुद्गल भी है तो पकड़ में नहीं आ रहा है, छाया क्या है? छाया पुद्गल है, अमूर्त नहीं है, मूर्त है। छाया अमूर्त है, छाया भी मूर्त है। इंद्री के पकड़ में आ रहा है कि दिखने में आ रहा है कि नहीं? पकड़ने का मतलब क्या? ऐसा पकड़ना, पकड़ में आने का मतलब इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आ जाए, दिखने में आ जाए, या तो हाथ में पकड़ में आ जाए, या तो कानों से सुनने में आ जाए, नासिका से सूंघने में आ जाए, जीभ से उसका रस रस पता चले, चखने में आ जाए, इसको कहते हैं मूर्त। मूर्त वस्तु इंद्रियों के गोचर है, अमूर्त वस्तु इंद्रियों के गोचर नहीं होता। मूर्त वस्तु इंद्रियों के गोचर है, कुछ हद तक है, उसके बाद वो भी नहीं है। अब देखो, छाया भी तो मूर्त है, पुद्गल का परिणमन है वो छाया। पकड़ में, हाथ से तो पकड़ में नहीं आता, लेकिन आंखों के पकड़ में आ रहा है। आंखों के पकड़ में आता है इसलिए मूर्त है। जो मूर्त है वो दिखता ही है इंद्रियों के माध्यम से, दिखता है। और दिखने वाले वस्तु को हम पकड़ नहीं पाते, ये बात अलग है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर उसको भी पकड़ लिया, मूर्त था इसलिए पकड़ में आ गया। ऐसा टाइप करते हैं तो अक्षर आ जाते हैं, और उनको बांध करके दूसरी जगह खींचा जा सकता है, हार्ड डिस्क में डाला जा सकता है, बंधन में रखा जा सकता है, कालांतर में उस छाया को निकाल करके देखा जा सकता है। ये अक्षर छाया रूप ही है क्या? नहीं, क्या कोई वस्तु है? वो छाया है, पुद्गल है क्या? नहीं, पुद्गल है। छाया को भी पकड़ने का आविष्कार हो गया, कंप्यूटर के अंदर आपका फोटो डाला जाता है, उसमें आ जाता है चित्र। अब इस पेन की तरह कोई वस्तु है क्या? वो नहीं है। आपने स्कैनिंग कर दिया, मशीन में डाल दिया, तो उसका चित्र उसमें चला गया। पोज तो आपके पास ही तो है, पोज आपके पास है, जो पुद्गल वस्तु है पकड़ में आप ग्रहण कर सकते हैं, वो आपके पास है, लेकिन इसकी छाया उसमें प्रवेश कर गई है और वह छाया दौड़ रही इधर का उधर, और आप उसको बांध करके खींच भी रहे हैं, इधर खिसका रहे हैं, इधर खिसका रहे हैं, सब और वो कर रहे हैं। उसी के सहारे से दूसरा फोटो प्रिंट आउट निकालते हैं, उसको निकाल सकते हैं क्या? जो है उसको डिवार करेंगे तो डिवार हो सकता है, डिसमिस करेंगे तो डिसमिस हो सकता है, लेकिन प्रिंटआउट के काल में वही खुद प्रिंटआउट होकर के बाहर निकल रहा हो और वहां से गायब हो रहा हो, ऐसा कुछ है क्या? तो है क्या वो अंदर जो पोज है, फोटो है, वो क्या है? वो केवल छाया है। छाया को हाथ से नहीं पकड़ सकते, लेकिन छाया को छाया के माध्यम से पकड़ सकते, ऐसा आविष्कार भी हो गया। और छाया आंखों से दिख रही है तो आंखों के ग्रहण में तो आ रही है, आंखों के पकड़ में तो आ ही रही है। अब ये अभी तक आविष्कार नहीं किया था कि उसको छाया को हिला सके कोई, इधर का उधर कर सके, बंधन में रख सके, कालांतर में उसको निकाल करके देख सके, ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन अब कर दिया। अब वो जो छाया है वो हमारे काम में आने लगी। उस छाया से हम दूसरे अपने कागज पर छाया छोड़कर उसका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और वह घर में लगाते हैं। समूचरण जैसा है वैसा ही फोटो आया। महाराज लोग जैसे हैं वैसे ही फोटो आया, बल्कि उससे अच्छा आया। सोने का कलर है। समोचरण भी सोने का दिख रहा है और महाराज भी सोने के दिख रहे हैं उसमें। देखो ये पुद्गल परिणति कैसी है। जिनेंद्र भगवान ने इसी पुद्गल परिणति का व्याख्यान किया है। ये पुद्गल तत्व उसमें एक मूर्त है। पुद्गल तत्व तो मूर्त ही है, परंतु जो पुद्गल नहीं और वस्तु है वो अमूर्त भी है। वस्तु मूर्त भी है और अमूर्त भी है, लेकिन जो वस्तु पुद्गल है वो मूर्त है और जो जो पुद्गल नहीं है वो अमूर्त है। तो ऐसे छह द्रव्यों में से कितने द्रव्य मूर्त और कितने द्रव्य अमूर्त, ये देखें। कौन कौन से छह द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब देखिए मूर्त कितने हैं इसमें। जो जो हमने कहा जो जो पुद्गल है वो मूर्त है और जो जो पुद्गल नहीं है वो सब अमूर्त है, वो पकड़ में नहीं आएंगे, इंद्रिय के विषय ही नहीं है वो। तो छह द्रव्यों में से कितने द्रव्य मूर्त हो गए? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, छह द्रव्य हैं, इसमें मूर्त कितने? एक ही तो है। छह द्रव्यों में से एक ही द्रव्य पकड़ में आता है, बाकी कुछ भी पकड़ में आता नहीं है। धर्म द्रव्य दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, काल के कालानु है बताते, कालानु, असंख्यात कालानु है, वो दिख रहे हैं? वो भी नहीं दिख रहे हैं। आवाज भी पुद्गल है, शब्द भी पुद्गल है। टेप रिकॉर्ड के पकड़ में आता है कि नहीं? आप बोलते हैं और वहां रिकॉर्डिंग हो रहा है। जो ग्रहण करने में आता है वो सब पुद्गल है। वहां पुद्गल पकड़ में आ रहे हैं, महाराज पकड़ में नहीं आ रहे। रिकॉर्डिंग जहां हो रहा है मैं पकड़ में आ रहा हूं क्या उसकी? केवल मेरी आवाज पकड़ में वहां आ रही है। तो आवाज क्या होगा? आवाज पुद्गल ही होगा ना। आवाज पुद्गल है, शब्द पुद्गल है। जो हमारे कानों से हम आवाज सुनते हैं ये इंद्री के कर्णेन्द्रीय के द्वारा पकड़ में ग्रहण में आ रहा है क्या? नहीं, तो पुद्गल ही है। पुद्गल शब्द इतने सूक्ष्म होते हैं, मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं दिख रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं वो इसमें और यहां से वहां पार हो रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पकड़ने के योग्य हैं। ये पुद्गल हैं, इसलिए पकड़ में आ सकते हैं और पकड़ में आने लायक मशीन की तैयारी भी हो गई। मशीन पकड़ रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। पुद्गल को पुद्गल पकड़ रहा है। कर्णेन्द्री ये क्या है? पुद्गल है क्या? जीव है, पुद्गल ही तो है। कर्ण, वहां जो पर्दा होता है वहां वो पकड़ता है शब्दों को। शब्दों को पकड़ने की कैपेसिटी वाला पर्दा वो पुद्गल है। उसको चेंज भी किया जा सकता है, पर्दे को ऑपरेशन करके बदला जा सकता है। किसी को नहीं सुनता है तो सुनने लायक बना देता है डॉक्टर। तो वो पर्दा है, पर्दा पुद्गल है, और उस पुद्गल के ऊपर बाहर के कोई शब्द आ गए तो उसको सुनाई देते हैं, वो भी पुद्गल है, पर्दा छोटा सा रहता है इतना सा, वो भी पुद्गल है, और पूरा शरीर भी पुद्गल है, ये भी तो एक पर्दा है। कान में अंगुली डालो और इस पर्दे पर से सुनो, देखेंगे। जोर से अंगुली डालो कान में, और ये भी तो पर्दा है, ये भी तो पुद्गल है। पुद्गल पुद्गल को सुने, शब्द आ रहा है सुने, सुन सकेगा? तो सुनने लायक पात्रता रखने वाला पुद्गल केवल कानों में ही है, अन्यत्र नहीं है, वो स्पेशल पुद्गल है। वो टेप रिकॉर्डर वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसमें ये पेन डालो, ये रिकॉर्डिंग करता है क्या, देखें? वो भी पुद्गल मशीन, ये भी पुद्गल, ये एक पकड़ता है और ये पकड़ता नहीं, उसकी विशेषता देखो, उसमें भी तो पुद्गल परमाणु ही तो है, जोड़ जोड़ करके बनाया है, लेकिन उसमें कुछ विशेषता है, इसमें वो विशेषता नहीं है। कानों में जो पर्दा है वो भी तो पुद्गल है, और हमारी नखून जो बन गई ये भी पुद्गल है, चमड़ी जो बन गई ये भी पुद्गल है, कानों में जो चमड़ी है वो भी एक चमड़ी ही है, पुद्गल से ही बना है वो भी, लेकिन वहां शब्द पकड़ में आ रहे हैं और इन पुद्गलों को शब्द पकड़ में नहीं आ रहे हैं, ये विशेषता देखो। लेकिन है सभी पुद्गल, पुद्गल पकड़ में आता है, जो जो पुद्गल नहीं है वो पकड़ में नहीं आता। ये इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता, कहने का मतलब ये इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता। पुद्गल अमूर्त को पकड़ लेता है, अमूर्त को पकड़ सकता है पुद्गल, और अमूर्त किस द्रव्य को पकड़ सकता है? पुद्गल द्रव्य, अमूर्त किस द्रव्य को पकड़ सकता है? काल द्रव्य को पकड़ सकता है क्या? पुद्गल काल द्रव्य को पकड़ नहीं सकता। धर्म द्रव्य को? उसको भी नहीं पकड़ सकता। अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, किसी को बंधन में नहीं डाल सकता, लेकिन एक अमूर्त द्रव्य को पुद्गल पकड़ करके बंधन में डाल सकता है। किसको? जीव को। देखो, अन्य द्रव्य तो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आत्मा पुद्गल के लिए पकड़ में आ रहा है, और उस पुद्गल के कारण से इस शरीर में बंधित हो गया है। जेल में जैसा आकर के बंधित होता है व्यक्ति, उस प्रकार से शरीर में आकर के आत्मा बंधन में पड़ गया है। अमूर्त है तो जब कभी भी आए, जब कभी भी जाए, इसको घर बनाए, ऐसा क्यों नहीं करता? आत्मा है कि नहीं इसमें? तो जब चाहे तब तक रहे, नहीं चाहे तब बाहर जाए और पुनः आए इसमें रहे, लेकिन ऐसा नहीं, एक बार गया तो गया, वापस नहीं आता। एक बार घर छोड़ दिया तो उसका घर नहीं, अब नया घर जा सकता है, नया घर ग्रहण कर सकता है, लेकिन पुराने घर में अगर बाहर निकला तो वापस नहीं आता। देखो विशेषता कितनी है। आत्मा एक बार बाहर गया तो गया, क्या मालूम क्या होता है, इसका दरवाजा बंद होता है या खुलता नहीं। वापस गया तो आता नहीं, जाना हो और वापस आना हो तो उसके लिए भी चांस दिया है, लेकिन संविधान के अनुसार जाना पड़ेगा। जाकर के लौट के आ सकता है, कैसा? तो कहते हैं घर को नहीं छोड़ना, घर को छोड़े बिना बाहर निकलना, कैसा? लंबा होकर, रबर की तरह फैलाव होते हुए फैलाव करते हुए अपने प्रदेशों को जाओ, इसको समुद्घात कहते हैं। क्या बोलते? मरण समुद्घात, वेदना समुद्घात, केवली समुद्घात, सात प्रकार के समुद्घात हैं। समुद्घात का तात्पर्य समुद्र घात नहीं, समुद्र नहीं। कुछ लोग समुद्र बोलते हैं, समुद्र घात का मतलब क्या है महाराज? समुद्र घात नहीं है वो, समुद्र घात समुत यानी सम्यक प्रकार से आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकालना। समुत उत बाहर, सम्यक प्रकार से, कैसे? यहाँ शरीर को छोड़े बिना, ये सम्यक प्रकार। असम्यक प्रकार से निकल गए तो नहीं आओगे, वो समुद्घात नहीं, वो तो मरण कहलाएगा। फिर मरण में पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, आता नहीं, रबर की तरह नहीं होता। जितने आकार में आत्मा है शरीर आकार से, उतने आकार से ही बाहर निकल जाता है, नया शरीर पा लेता है। चार सेकंड के अंदर यहां से वहां जाकर शरीर को ग्रहण कर लेता है, पर समुद्घात के अंदर शरीर धारण नहीं करेगा। दूसरा कोई शरीर है वहां पर धारण कर लिया और वापस नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक शरीर बना करके यहां से भेज सकता है समुद्घात के टाइम में, किंतु मूल शरीर को छोड़ करके नया शरीर पाएगा नहीं समुद्घात के काल में। तो कैसा करेगा? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकाल लेगा। जैसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं, मरण के काल में होता है, और वो मारणांतिक समुद्घात क्या है? यही है कि आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकालो, और जहां पर जन्म लेना है उस स्थान को स्पर्श करके वापस पुनः आ जाओ। इसको कहते हैं समुद्घात। एक क्षण वहां तक जा करके लौट के आ जाता है, आत्मा पूरा नहीं जाता। मूल शरीर को छोड़े बिना ऐसे रबर की तरह फैलाव अपने प्रदेशों को पसारते हुए जाता है, स्पर्श करके लौट के आता है, और फिर इसके पश्चात मरण करता है। मरण करने के पश्चात इस घर को पूरी तरह से छोड़ देता है। एक बार छोड़ दिया तो वापस लौट के नहीं आता। मरण के समय में वापस लौट के आना संभव नहीं, समुद्घात के काल में वापस लौट करके भी आता है, आता ही है। शस्त्र वापस आता है, वो शस्त्र अलग है, उस शस्त्र के साथ आत्म प्रदेश नहीं जुड़ते। शस्त्र शस्त्र होता है, पुद्गल होता है, वो जाता है, वो अपना काम करके आता है। आत्मा का उसके साथ कोई संबंध तर्तमता नहीं होती, वो अलग है। यहां बात चल रही है आत्मा की। आत्मा जाए भी और लौट के आए तो मूल शरीर को छोड़े बिना जाता है और लौट के आता है। कहां पर कब? आता है ना, उसी को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। पर जाता कब आता कब, एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। मारणांतिक समुद्घात एक ही बार। श्वासोश्वास होना अलग है, वो तो श्वासोश्वास पुद्गल है, जीव डर डर
आवाज भर दीजिए, आवाज भरो तो लाए, जो सांसो सांस जरा हवा वाला होगा कि जागे रुला। आवाज डालना अलग बात है, आवाज से क्या मतलब, आवाज से मतलब नहीं, आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते समय आवाज हो ये कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल चुपचाप आत्मा आवाज के बिना भी स्पर्श करके आ सकता है। आवाज को सुन रहे हैं क्या? आवाज ही मतलब वो है, समुद्घात है ऐसा नहीं, आवाज से कोई मतलब नहीं। आवाज इसलिए आती है कि श्वासोश्वास में तकलीफ होती है, इसलिए आवाज आती है। नींद में भी आवाज करते आप तो क्या आत्मा आती जाती है क्या? ऐसा नहीं। हर आत्मा ओ मरण के काल में समुद्रगात, मरणांतिक समुद्रगात करना, हाँ मरणांतिक समुद्रगात के काल में मरण के स्थान को देख करके आता है, फिर यहां से स्पर्श करके आता है, यहां से फिर छूट जाता है। ऐसा हो जाता है, बहुत अल्प समय के लिए होता है, बहुत अल्प समय, सेकंड भर के लिए हो जाए, वो ऐसा छू जाए, वापस आ जाए और एकदम चला जाए, फिर गया, वापस नहीं आएगा। फिर वहां तक जाकर के जब आता है, शरीरधारी नहीं बनता, चले जाने के बाद शरीरधारी बनता है। इस शरीर को छोड़े बिना उत्तर शरीर ग्रहण नहीं करते, बाद में ग्रहण करते। हाँ वापस आ जाए तब तक शरीर ग्रहण नहीं कर, डबल शरीर एक साथ ग्रहण नहीं करता। एक आहारक समुद्घात है, एक आहारक समुद्घात है, उसका देखो मुनि महाराज के मस्तक से एक हाथ प्रमाण सफेद मनुष्याकार का पुतला, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, वो निकलता है, उसमें आत्मा के प्रदेश है, मनुष्य जैसा ही दिखता है वो, और चला जाता है। क्यों चला जाता है ऐसा? महाराज को तत्व में कोई शंका हो जाए और समाधान नहीं हो रहा है तो इस शंका समाधान भगवान से करूं, क्या इसका उत्तर है पूछूं, इस प्रकार उनके मन में तीव्र जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा होते ही अंदर में आहारक वर्गनाओं के माध्यम से आहारक शरीर की निर्मिति हो जाती है, अंतर्मूर्त के भीतर तैयार हो जाता है, तैयार होते ही वह बाहर निकल पड़ता है, पर्याप्ति उसकी पूर्ण हो जाती है तो बाहर निकल पड़ता है। निकल करके एक सेकंड में जा करके भगवान के आत्म प्रदेशों को स्पर्श करके लौट के आ जाता है। वहां जैसा ही स्पर्श करता है मुनि महाराज को उसका उत्तर मिल जाता है। अभी नहीं, अभी कहां से, पंचम काल में कहां से। पंचम काल में क्यों नहीं है ये पूछो, सहनन नहीं है। पहले के तीन सहनन वालों को ही होता है, सहनन नहीं है उत्तम सहननधारी को, और वो मिलना बंद हो गया, मिलना बंद हो गया, नहीं तो अपने पास भी मोबाइल था। भगवान के पास जा करके हम स्वयं आ सकते थे, मतलब मोबाइल कौन सा, आहारक शरीर ही हमारा मोबाइल, मोबाइल को ही भेजते हम, मोबाइल जा करके स्पर्श करके वापस आ जाता। समुद्घात के काल में छठा गुणस्थान, हाँ हाँ बस वही सप्तम गुणस्थान छठा गुणस्थान रहता है। मरण समुद्घात में भी जो गुणस्थान उसका होता है, चौथा गुणस्थान है या मिथ्यात्व गुणस्थान, जहां रहेगा वहीं से करेगा। एक केवली समुद्घात है,
केवली भगवान 13वें गुण स्थान से अपने आत्म प्रदेशों को बाहर निकालते हैं, वो अलग है। वो तीन लोक के बराबर अपने आत्मा को बड़ा कर देते हैं, 14 राजू प्रमाण अपने आत्मा को फैलाव कर देते हैं, भर जाता है पूरा अंदर। घनाकार तीन लोक, वो डब्बा, उसके अंदर तीन लोक का डब्बा देखा है ना, गुप्तदान। भगवान मध्यलोक में है और अपने केवली समुद्घात को इसलिए करते हैं कि आयु कर्म के बराबर ही सभी कर्मों को करने के लिए, आयु कर्म से ज्यादा कर्म होते हैं यानी काल मर्यादा उनकी अधिक होती है, उन काल मर्यादाओं को आयु कर्म के बराबर करने के लिए आत्म प्रदेशों का फैलाव करने पर वो बराबर हो जाते हैं, ऐसी कुछ वो प्रक्रिया है। जैसे आयु कर्म बहुत कम रह गया है और शेष कर्मों का काल बहुत अधिक है, तो आयु कर्म खत्म होने के बाद ये कर्म फल देते रहेंगे ना, आयु कर्म खत्म होने के साथ साथ सभी कर्मों को खत्म होना आवश्यक है, तो उनके बराबर इनके काल मर्यादा को समान करने के लिए समुद्घात करते हैं। जब समुद्घात करते हैं तो ऐसा करते हैं, पहले तो ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं, ध्यान अवस्था में ही समुद्घात होता है, बैठे बैठे नहीं होता, ध्यान अवस्था में रहते हैं, पहले अपने आत्मा के प्रदेशों को दंडाकार बाहर निकालते हैं, दंडाकार यानी एक खंभा, इस खंभे के आकार से ऊपर पहुंच जाता है, कहां पर, लोक शिखर तक, ऊपर तक और नीचे भी नीचे तक दंडाकार हो जाता है, फिर उसका फैलाव करते हैं, तो ये चौकाकार आयताकार हो गया, दंडाकार, ये कपाट आकार, किसको कपाट आकार बोलते हैं, कपाट आयताकार, पहले दंडाकार फिर कपाट आकार फिर प्रतर आकार, यानी सब जगह फैलाना शुरू करते हैं और लोक जिस आकार का है उस आकार का, इसको प्रतर आकार कहते हैं, धीरे धीरे फैलता है, फिर लोक में उस आत्मा के प्रदेशों को उसी आकार से बना देते हैं, तो पैक हो गया। तीन लोक के बराबर बड़ा हो सकता है ये आत्मा, असंख्यात राजू, असंख्यात राजू नहीं, असंख्यात योजन यानी 14 राजू मोटा बन सकता है, उससे भी मोटा बन सकता है, लेकिन उधर धर्म द्रव्य न होने से और फैलाव नहीं कर सकते। आत्मा कितना बड़ा बन सकता है और कितना छोटा बन सकता है, इसका कोई अंत नहीं, लेकिन धर्म द्रव्य के कारण से तीन लोक के बराबर होता है ये। फिर क्या करते हैं, समेट लेते हैं, तीन लोक के आकार को फिर प्रत्राकार में लाते हैं, समेटना प्रारंभ हो गए तो प्रत्राकार बन गए, प्रत्राकार से फिर कपाट आकार से बना देते हैं, फिर कपाट आकार से खंभाकार बनाते हैं और खंभाकार को समेट करके अपने आत्म प्रदेश में ले लेते हैं, शरीर के बराबर पुनः हो गया। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करना पड़ा आयु कर्म के बराबर शेष कर्म सभी उसके बराबर होकर के बैठ गए। अब आयु कर्म जब समाप्त होगा पूरे कर्म समाप्त हो जाएंगे और आत्मा सिद्ध परमिष्टि बन जाएगी, ऐसा सब ये करते हैं। किंतु मुनि महाराज का अलग है, ये आहारक समुद्घात है, वो केवली समुद्घात है। आहारक समुद्घात को क्यों करते हैं, तो शंका समाधान के लिए। केवली समुद्घात क्यों करते हैं, आयु कर्म को बराबर, आयु कर्म के बराबर सब कर्मों को करने के लिए। हाँ, मरने के पहले नहीं, कर्मों को बराबर बनाने के बनाने का स्थान तो केवली भगवान के पास ही है, केवली समुद्घात के माध्यम से ही होगा, हमको नहीं है वो समुद्घात, तेरहवें गुणस्थान में जो होता है वो उसका नाम ही समुद्घात। तो हमको भी तेरहवें गुणस्थान में जाना पड़ेगा। अगर केवली समुद्घात करना चाहते हैं तो केवली तो बनना पड़ेगा, केवली तो बनना पड़ेगा। आहारक समुद्घात जो है वो शंका समाधान के लिए, कहीं तीर्थ यात्रा करने की अपेक्षा हो गई तो आहारक शरीर को भेजेंगे, वो उसके माध्यम से जाकर के सभी चैत्यालयों का, मंदिरों का दर्शन करके लौट के अंतर्मूर्त के भीतर आ जाएंगे, बैठे बैठे समय शिखर का दर्शन। मध्यलोक में कहीं भी सब जगह नहीं। आहारक समुद्घात का प्रसरण ढाई द्वीप के अंदर ही है, मनुष्य लोक के भीतर, मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर नहीं जाता। मध्यलोक में यानी ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप में कहीं भी जा सकते हैं, उसके बाहर भोग भूमि आदि है उधर नहीं, उधर नहीं जा भेज सकते। इधर सुमेरु पर्वत आदि और इधर ढाई द्वीप मनुष्योत्तर पर्वत तक कहीं भी जा सकते हैं। इसको कहते हैं आहारक शरीर, नीचे नहीं। वेदना समुद्घात वेदना के काल में होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, खूब वेदना हो रही है, तो उस वक्त आत्मा के प्रदेश कुछ बाहर आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। छिपकली को देखा, छिपकली उसकी पूंछ कट जाती है, कटती कि नहीं, और वो तो भाग जाता है, उसकी पूंछ यहां ऐसे 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 करती रहती है। क्या है वो, उसे अपने आप कैसे हिल रही, आत्मा दो हो गए क्या, आत्मा कट सकती है क्या, आत्मा जल सकती है क्या, आत्मा टुकड़े हो सकती है क्या? टुकड़ा तो शरीर हुआ है, उसकी पूंछ ऐसे ऐसे क्यों कर रही? हाँ, आत्मा के प्रदेश वहां से लेकर यहां तक टच हैं अभी, और वो समेटेंगे धीरे धीरे, उधर के इधर जाएंगे कि इधर के उधर जाएंगे। हाँ, जो बड़ा शरीर है उस तरफ खिंच जाते हैं, आत्मा के प्रदेश जहां अधिक हैं उस तरह कम प्रदेश वाले अधिक की ओर खिंच जाते हैं, और खिंचने के बाद पूंछ हिलना बंद हो जाती है। युद्ध में भी जब गर्दन कटते हैं युद्ध में, तो ढांचा चलता रहता है और शरीर सिर भी हिलता रहता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, आत्मा के प्रदेश वहां भी है और यहां भी है, दोनों हिलते रहते हैं, और जब प्राण चला जाए तो दोनों हिलना बंद होते हैं, और जिसमें से प्राण इधर आ जाए या उधर चले जाए तो जिसमें से जो निकल गए वो बंद हो जाता है, और जिसमें है वो हिलता रहता है, और उसमें भी फिर बाद में मरण होता है। आत्मा है शरीर में, इससे ज्ञात होता है आत्मा है, केवल रक्त मांस खून हड्डी इतना ही नहीं, उसके भीतर एक अनंत शक्तिशाली पदार्थ कोई है, उसी का नाम आत्मा। तो ये समुद्घात है, वेदना के काल में वेदना समुद्घात है। तो पूंछ छिपकली की जो पूंछ है उसको खूब दर्द होता रहता है, उस समय में वेदना समुद्घात के काल में आत्मा के प्रदेश कंपनशील रहते हैं, बाहर जाते हैं आते हैं, या कुछ भी नहीं कटा और बहुत वेदना हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, जैसे किसी को ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के काल में भी वेदना समुद्घात हो सकता है, बहुत दर्द होना चाहिए हो ये नियम नहीं, परंतु उसके क्वालिटी का दर्द होना चाहिए, उस क्वालिटी का दर्द हो तो आत्मा के प्रदेश बाहर जा सकती।
क्या बताया जा रहा था? बहुत दूर गए। मूर्त अमूर्त का चल रहा है। मूर्त वस्तु पकड़ में नहीं आती, अमूर्त वस्तु पकड़ में नहीं आती, मूर्त वस्तु ही पकड़ में आती है। इंद्रियों के पकड़ में मूर्त वस्तु ही आती है, ये समझ में आया। जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया है बड़ा मार्मिक है, साइंटिफिक है सब, इसलिए हमें विश्वास करना ही पड़ता है। उससे ज्यादा खोज विज्ञान भी नहीं कर रहा है। उन्होंने जितना कहा है वो तो एक बार में कह दिया है। सबसे बड़े विज्ञानी तो वो हैं। आज का विज्ञान क्या है उसको खोज रहा है। उन्होंने क्या क्या कहा उसको साकार बना रहा है एक 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 करके। इसका नाम विज्ञान है। उन विज्ञानियों के विज्ञानी कौन है? तीर्थंकर भगवान है। तीर्थंकर भगवान को विज्ञानी मानो, विज्ञानियों के विज्ञानी प्रिंसिपल, सबके हेड, विज्ञानियों के हेड प्रिंसिपल हमारे तीर्थंकर, केवल ज्ञानी। उनके पास कितना अपार ज्ञान है। दुनिया के किसी भी कोने में पड़े हुए पुद्गल परमाणु के संबंध में पूछो उसका भी व्याख्यान डिटेल कर सकते। वो अभी कहाँ है, किस जगह पहला था, आगे कहाँ रहेगा, भविष्य भी पूछो उनसे। तीर्थंकर भविष्यकार भी हैं। और कल का नहीं, एक महीने के बाद का नहीं, आप अनंत काल के बाद का भी पूछो, वो भविष्य बता सकते। चौथे काल में असली भविष्यकार तो वो थे, केवल ज्ञानी। और वो जब तक धरती पर रहते हैं, छोटे मोटे भविष्यकार तो रहते ही नहीं उस समय। उनके पास कौन जाएगा? पैसा लेता है वो। और विदाउट पैसा लिया हो ना, अनंत काल का भविष्य पूछ के हम आ सकते हैं। ऐसे केवल ज्ञानी तीर्थंकर, एक समोचरण में एक बार जाना जरूरी है बस। एक बार जा करके अपने अनंत काल के इतिहास को सुन करके आना, भगवान मेरा अनंत काल का ये क्या क्या भविष्य का इतिहास से ये बताओ, इतिहास नहीं भविष्य, हमको ये बताओ। आप याद नहीं रख सकोगे वो जो बताते, तुम इस भाव के बाद ये बनोगे, ये बनोगे, ये बनोगे, ऐसा मरण होगा, ऐसा संबंध मिलेगा, ऐसा निमित्त मिलेगा, सब बताना शुरू कर दे तो क्या क्या याद रखोगे आप अपने संबंध में। वो बता रहे हैं और हम याद नहीं रख पा रहे। केवली भगवान केवल ज्ञान से अनंत को बताना, तो गंधर्व परमेष्टि तो शंका समाधान अन्य टाइम में करते हैं। पर सुनो सुनो, वही बता रहा हूँ, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ते ही आपको तो अपनी भाषा में समझ में आती ही है, पर उसमें और भी शंकाएं प्रश्न बाद में चिंतन करने पर आपको उत्पन्न होते हैं। उनका शंका समाधान फिर अन्य टाइम में कौन करेंगे? तो आपका शंका समाधान गंधर्व परमेष्टि भी करते हैं, लेकिन गंधर्व परमेष्टि वहां जाकर के और फिर अनंत की बात पूछ रहे हैं, तो गंधर्व परमेष्टि कहते हैं अभी ठहरो, भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ेगी, जाके बैठ जाना वहां, तुम्हारी बात तुम्हारे लिए आ जाएगी। परंतु इसके लिए भी पुण्य चाहिए। तुमने भगवान से पूछा और तुम्हारे पुण्य के उदय से अगर दिव्य ध्वनि खिड़ी तो तुम्हारा भाग्य, अगर नहीं खिड़ी, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो समझ लेना मेरा पुण्य का बल कम है। करंट कम है तो मोटर शुरू नहीं होगा। तुम्हारे पास फुल चार्ज चाहिए,
तुम्हारी बैटरी में जितना पुण्य चार्ज रहेगा, यहां स्विच दबा दो वहां गिरने लगता है पानी। बैठ जाओ, नहा जाओ उसके नीचे बैठ करके। भगवान बोलते नहीं, दिव्य ध्वनि करती उनके ओंकार रूप, उनकी उनके मुखार में सर्वांग से गिरता है, सर्वांग से गिरता है। ओम ये जो है ना मुख से गिर रहा है, ये सर्वांग से निकलता है, रोम रोम से निकलता है वो। ओम रोम रोम से निकालो उसको, और वह तरंगे ओंकार की तरंगे, उसमें केवली भगवान ने भव्य जीवों ने जो पूछा था उसको लेकर के वो तरंगे निकलेंगे, और वो आपके कानों तक आने तक तो ओम है। कानों में जब शब्द प्रवेश करेंगे, भाषा में आपकी भाषा में कन्वर्ट होकर के प्रवेश करेंगे। ये देवकृत अतिशय देवलोक करते हैं ये। हाँ ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपके प्रश्न आपके मन में एक प्रश्न था मुझे पूछा, उसके आसपास का ही प्रश्न इनका था, तो आपको उत्तर मिलते समय इनको भी मिल जाता है। अलग प्रश्न हो तो मिले ये गारंटी नहीं, और मिल भी सकता है क्योंकि उसका विस्तार इतना बड़ा होता है। एक प्रश्न का उत्तर 3 घंटे तक दिव्य ध्वनि करती है, तो और भी उसके आसपास के सारे विषय को भी तो बताते होंगे। आज का प्रवचन शंकादि दोषों को लेकर के हो रहा है, लेकिन केवल एक ही नहीं हो रहा है, ये 6 द्रव्यों को लेकर के होने लगा। तो इनका 6 द्रव्यों में से कोई क्वेश्चन था वो समाधान को प्राप्त हो गया, और आपको शंका समाधान इससे प्राप्त हो गया। एक विषय नहीं आता, अगर मान लो उसमें रह भी गया तो इनके मन में पूछने की जिज्ञासा रहेगी, नहीं आया मुझे, या तो समझ में नहीं आया, दिव्य ध्वनि में तो आया था लेकिन इनको पकड़ में नहीं आया, क्योंकि इनके पास सूक्ष्म शक्ति इतनी नहीं है तो पकड़ में नहीं आया। तो पकड़ में नहीं आया तो प्रश्न तो रहेगा ही, वो भगवान ने कहा है लेकिन पकड़ में नहीं आया, प्रश्न तो रहेगा ही, तो आप पुनः पूछेंगे, और दिव्य ध्वनि का टाइम नहीं है तो वहां से तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, वहां पूछेंगे गंधर्व परमेष्ठी के पास जाकर के गुरु से पूछा, उन्होंने कहा इस प्रश्न का उत्तर मैं समझाता हूं बैठ जाओ, तो उनको जितना मालूम है उतना कहेंगे, और उनके बाहर का उनके ज्ञान के बाहर का आप अगर पूछ रहे हैं भव आदि के संबंध में, ये भगवान मुझे अनंत भव का बाद का बताओ, तो मेरी शक्ति नहीं है। गंधर्व परमेष्ठी कहते तुम जाओ पुनः एक बार अनंत भव के बाद का इतिहास तुम पूछो, तब आपको डिटेल वहां मिलेगा। यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी गंधर्व परमेष्ठी होते हैं। उनके ज्ञान के परिधि के भीतर, उनके रेंज के भीतर जितना प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर है, उसको तो वो देख सकते हैं, दे सकते हैं, उसके बाहर का नहीं दे सकेंगे। जैसे मान के चले अवधि ज्ञानी संख्यात भवों के संबंध में कह सकता है, मन परे ज्ञानी संख्यात भवों के संबंध में आपको उपदेश दे सकता है, अनंत भव के संबंध में तो नहीं दे सकता, असंख्यात भव के संबंध में तो नहीं दे सकेगा। तो उसके बाहर का कोई भव आप पूछना चाहते हैं तो केवली के सहारे से पूछना पड़ेगा, गंधर्व परमेष्ठी नहीं चलेंगे। तो समूह शरण में विशेषता यह है कि दिव्य ध्वनि जो खिरती है सर्वांग से खिरती है, कानों तक आने के उपरांत देवकृत वह अतिशय जो सर्वभाषामयी अतिशय कहलाता है, सर्वभाषाओं में वो कन्वर्ट करते हैं। जो व्यक्ति बैठा है जिस भाषा का है उस भाषा में ही उसको सुनाई देता है। मैं बैठा हूं तो मैं जो चाहता हूं उसमें सुनाई देगा, मेरी चाह जिसमें है उसमें ही सुनाई देगा। कल्प वृक्ष के सामने जाकर के चाह के अनुसार वस्तु मांगोगे तो चाह के अनुसार उसी पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा जो सामग्री दे सकता है। तो मुझे इस प्रकार का चाहिए, जैसे खाद्य पदार्थों के वृक्षों के नीचे पहुंच गए तो खाद्य पदार्थ में हमें आज लड्डू नहीं चाहिए, जिलेबी चाहिए, तो जिलेबी दे देगा खाद्य पदार्थ। पेय पदार्थ वो वृक्ष अलग है, पेय पदार्थ देने वाले वहां पर अपनी इच्छा को व्यक्त करो, कौन सा पेय पदार्थ, दूध चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, क्या चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा। जो मन में इच्छा हुई वो वस्तु आ जाती है। ऐसे केवली भगवान के समूह शरण में ये अच्छे है। आप किस भाषा में चाहते हैं बोलो, इच्छा भर करो, उस इच्छा के अनुसार वह भाषा में वो शब्द वर्गनाएं कन्वर्ट होंगी और आपको उसी भाषा में सुनाई देगा। ये अतिशय देवों का है, ये भगवान का नहीं। भगवान के पुण्य के उदय में देव वो अतिशय करने के लिए वहां पर समूह शरण की रचना करते हैं। अब देखिए, देवों ने समूह शरण की रचना की किसके लिए, किसके लिए मैं पूछ रहा हूं क्या? देवों ने समूह शरण की रचना की किसके वास्ते? हाँ, ये कहना पड़ेगा, भव्य जीवों के वास्ते। पर कहां पर की? मध्यलोक में। किस जगह? जहां पर भगवान है। जहां पर भगवान होते हैं वहीं करना पड़ेगा ना। भगवान यहां और समोसरण वहां बना के बैठ गए तो दिव्य ध्वनि कौन खिराएगा? उनके दिव्य ध्वनि को सुने सभी संसारी प्राणी, इसलिए समोसरण की रचना होती है। और उसकी रचना किसके लिए होती है? भगवान के लिए होती है क्या? भव्य जीवों के लिए। और भगवान की दिव्य ध्वनि कब तक नहीं खिरती? बिल्कुल ठीक है, गंधर कहो, भव्य जीव कहो, गंधर परमिष्टि आ गए तो खिरना नियम है क्या? नहीं। समूह शरण में जीव भी चाहिए ना। हाँ, सुनने वाले जीव भी चाहिए। केवल गंधर परमिष्टि के लिए दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। दिव्य ध्वनि समस्त भव्य जीवों के कल्याण के लिए खिरती है। तो दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हो गई तो वहां पर कौन कौन होते हैं? त्रिंच भी होते, मनुष्य भी होते, देव भी होते हैं, सबके लिए दिव्य ध्वनि खिर रही है। अब ये समूह शरण की रचना भगवान के उद्देश्य से करते हैं या भव्य जीवों के उद्देश्य से? भव्य जीवों के उद्देश्य। भगवान को समूह शरण से कोई मतलब है क्या? नहीं है। भगवान ने बुलाया क्या तुम समूह शरण की रचना करो? ऐसी नहीं है। तो ये समूह शरण की रचना जो हो रही है ये किसके पुण्य के उदय से हो रही है? भव्य जीवों के पुण्य के उदय से हो रही, ये कहेंगे तो भगवान की कोई जरूरत नहीं। हाँ, समूह शरण की रचना तभी होती है जब किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाए, और तीर्थंकर को ही, सामान्य को नहीं, तीर्थंकर को ही समूह शरण की रचना देव करते हैं, अन्यों को नहीं। जैसे आपने दीक्षा ली है उसी भाव से मोक्ष जाना है तो आपको समूह शरण की रचना नहीं होगी। समूह शरण में आप रह सकते हैं, आपको तो गंधकुटी की रचना हो सकती है। गंधकुटी एक छोटा समूह शरण, एकदम छोटा, वो अलग है। समूह शरण बृहद होता है, बहुत बड़ा होता है और उसमें व्यापक रूप से संसारी प्राणी अपने आत्म कल्याण करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। गंधकुटी में इतने इकट्ठे नहीं होते जितने केवली भगवान के समूह शरण में। वहां पर तो
तो स्वर्गीय संपदा को ही ला करके उतार देते हैं। विक्रिया के माध्यम से सब एक मिनट में समुच्चयन की रचना बन जाए, एक मिनट में गायब हो जाए। जादू देव लोग ऐसा ऐसा करते हैं, फुर समुच्चयन बन गया। ये देवों का काम है, परंतु हम पूछ रहे हैं आपसे, ये समुच्चयन की रचना भव्य जीवों के पुण्य के उदय से होता है ये कहेंगे तो भव्य जीव तो हमेशा रहते हैं संसार में, इस समय में भी आप लोग भव्य हैं, समुच्चयन की रचना क्यों नहीं करते? तीर्थंकर है क्या इस समय में? वो नहीं है इसलिए तो नहीं करते, भव्य जीव तो हमेशा हैं। इकट्ठे हो जाओ और मन में भावना भाव, हमको समुच्चयन की रचना करो हे देवो, हमको उपदेश सुनना है। किसका सुनना है पूछते हैं पहले वो, तुम्हारे सामने एक भगवान चाहिए तब इसकी रचना करना सार्थक है, फालतू हम नहीं करते। दिखाने के लिए भी नहीं करते वो, देखो समुच्चयन का मतलब ऐसा होता है, दिखा करके भव्य जीवों को दिखाने के लिए भी नहीं करते। वो तो केवली भगवान तीर्थंकर ही हो और तीर्थंकर भगवान भी मुनि अवस्था में है तो भव्य जीवों के सामने समुच्चयन देखने को नहीं मिलेगा। वो किस गुणस्थान में जाए? 13वें गुणस्थान में जाए, केवल ज्ञान प्राप्त करे तो समय नहीं लगेगा, अंतर्मूर्त के अंदर समुच्चयन की रचना करने वाला कुबेर वह आ जाएगा। इंद्र आदेश देता है कुबेर के लिए, कुबेर वह कोषाध्यक्ष आदेश देता है, जाओ भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, महावीर भगवान तीर्थंकर अंतिम 24वें तीर्थंकर, जाओ भरत क्षेत्र में जाना है और समुच्चयन की रचना करना है। वही सौधर्मेंद्र सब जगह समुच्चयन की रचना वही करता है, सौधर्मेंद्र आदेश कराता है वही है। विदेह क्षेत्र में 20 समुच्चयन है तो 20 समुच्चयन की रचना वही करेगा, यहां भी कोई भगवान हो गए तो यहां पर भी वही करेगा, सब जगह समुच्चयन की रचना एक अकेला ही करता है। तो कितनी बड़ी संपदा होगी उनके पास, और वो संपदा ये भी पुण्य का फल है। इंद्र पदवी पर जन्म लेने के बाद वह देवों का मालिक और स्वर्ग में रहने वाली संपत्ति का मालिक हो जाता है, उसका सदुपयोग तो होना चाहिए। तो ऐसे संदर्भ में सदुपयोग करता है, जाओ इस संपत्ति का सदुपयोग करो, भव्य जीव आत्म कल्याण करे, आत्म कल्याण के लिए तुरंत आदेश पा करके वो कुबेर आता है, खड़ा होकर के भगवान ऊपर, उनका केवल ज्ञान होते ही 500 धनुष ऊपर आकाश में आधर में रहता है, विराजमान रहते हैं पद्मासन में, उसके नीचे समुच्चयन एक मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। कमल से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं भगवान, सबको 4 अंगुल ऊपर दिखते हैं। यहां कुछ ज्यादा दिख रहा है क्या? नहीं, बराबर दिख रहा है। कमल से 4 अंगुल यानी उस समोशन से भगवान को कोई भी मतलब नहीं है, वो तो काम उनका था, इंद्र का और कुबेर का, उन्होंने बना लिया। किसके लिए बना लिया? किसके लिए बना लिया है? उनका उद्देश्य क्या था? भव्य जीवों को उपदेश मिले, आप जैसे भव्य जीव आकर के उपदेश सुनेंगे और भगवान का उपदेश सुन करके निर्मोही हो जाएंगे, आत्म कल्याण करेंगे, मोक्ष जाएंगे, इस आपके कल्याण के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, क्या भगवान के कल्याण के लिए? कोई समझे कि तो भगवान को ही बनाता है।
इंद्र तो भगवान के लिए ही समूह शरण निर्मित कर देता, ऐसा है क्या? उनके लिए समूह शरण नहीं बनाया जाता, उनके पुण्य के प्रताप से भव्य जीवों को समूह शरण निर्मित होता है। कि किसका पुण्य है? तीर्थंकर का ही पुण्य है जो समूह शरण की रचना हो गई, आप लोगों का पुण्य नहीं, भव्य जीवों का। तीर्थंकर के पुण्य के प्रताप से ही, उस तीर्थंकर प्रकृति के उदय आने पर ही समूह शरण की रचना हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई? भव्य जीव तो पहले भी थे, तो आपके पुण्य से कुछ नहीं होता वहां। वहां तो तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का उदय आना चाहिए, तब वह संपदा को बिछाता है ला करके। स्वर्गीय संपदा बिछा दिया उनने, अब वो कहता है इस स्वर्गीय संपदा को बिछाने का जो उद्देश्य था वो पूरी होना चाहिए, तो उसमें ये भावना रहती है कि सारे भव्य जीव समूह शरण में आकर के उपदेश सुने, ये उद्देश्य रहता, सुन करके प्रभावित होकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, संयम धारण कर ले, ये उद्देश्य रहता और वो शुरू हो जाता। जब तक भगवान की आयु है तब तक समूह शरण है, भगवान की आयु समाप्त हो गई उसके साथ समूह शरण भी समाप्त। तो समूह शरण साथ चलता है क्या? साथ ले जाने की जरूरत नहीं, भगवान उठ के विहार करते हैं, चले जाते हैं और समूह शरण को यहां गायब कर देते हैं। वो फिर भगवान जहां जा रहे हैं वो देख लेते हैं, कहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, देखेंगे कहां ठहरते हैं, देखेंगे कहां ठहरते हैं, जा करके आ गए और पेटवड़ गांव के बाहर खेतों में अधर में भगवान बैठ ही गए, विहार रोक दिया, वहां आ जाते हैं, जादू कर लेते हैं, तैयार हो गया समूह शरण। अब इंद्र आपको बुलाता नहीं, आओ भगवान आए हैं उपदेश सुनने आओ, ये बुलाएगा नहीं आपको, लेकिन खबर तो लगती है, खबर तो लगती है, वो कुछ अद्भुत आया है। इतनी खबर जोरदार फैलती है उसकी कि आसपास में योजनों पर्यंत उसकी चर्चा होने लगती है और देखने के लिए दौड़ दौड़ करके समोषण को देखने के लिए भव्य जीव आते हैं। वो देखने के लिए आते हैं और सुन करके चले जाते हैं भगवान को। जब सुन करके चले जाते हैं तो उनको सम्यक दर्शन का लाभ, उनको संयम का लाभ ऑटोमेटिक होने लगता है। ऐसा ही एक समूह शरण की रचना भव्य जीवों को पंचम काल में भी देखने को मिले, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हैं? लेकिन इंद्र कौन बनेगा? सवाल ये है। और कुबेर कौन बनेगा जिसके आदेश से इसकी रचना हो जाए और अपनी संपदा का सदुपयोग बन जाए? होना चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये, इधर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। पंचम काल में देख तो नहीं सकते समूह शरण, लेकिन ऐसा भी समूह शरण बिना देखे हमारा मरण हुआ तो हमारा जिंदगी क्या सार्थक हो गई। और इस समूह शरण में आज भगवान का उपदेश तो नहीं सुन सकते हम हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि को मुनि के माध्यम से सुनना आवश्यक हो गया आज। हाँ, सुना था कि नहीं? कितना आनंद आया था, आप भूल सकते हैं उसको? ये समूह शरण में बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि को मुनि के मुखारविंद से सुनना, इसका भी भाग्य चाहिए। यहाँ पर दोनों दिखने को मिलते हैं, भगवान की ध्वनि भी सुनने को मिल रही है और आंखों से देखने को साक्षात तीर्थंकरों का समूह शरण मिल रहा है। करो, धन का सदुपयोग करो, विषयों में मत डालो, विषय कषायों में पता नहीं चलता कितना जा रहा है। एक होटल में गए तो हजार डेढ़ हजार दस हजार, फाइव स्टार में गए तो बिल्कुल स्टार, कितने खर्च करके आते हैं लोग, विषयों में भोगों में धन जा रहा है, दुरुपयोग हो रहा है वो सब। उस धन का सदुपयोग यहां करो, एक बार करो, बार बार तो करना नहीं पड़ता। एक बार हो गया तो इसका विहार होगा, हर पंच कल्याणक में इसको दर्शाया जा सकता है, हर चातुर्मास में इसको लगाया जा सकता है, कोई विधान वगैरह हो रहे हो वहां पर भी जाकर के उसको लगाया जा सकता है। आकर्षण से लोगों का परिणाम धार्मिक बनेगा कि नहीं, और आपके निमित्त से, आपके धन के निमित्त से अगर लोग एक भी उसमें सम्यक दृष्टि बन गए तो ध्यान रखना आपको भाव भाव तक सम्यक दर्शन साथ रहेगा। जो दूसरे को सम्यक दर्शन दिलाने में निमित्त बनता है, दूसरे को संयम धारण कराने में निमित्त बनता है, वो आज न कल संयमी बन करके निकट भव में मोक्ष जाएगा। धन का सही सदुपयोग यहां है। एक मंदिर को बांधने से भी महान पुण्य एक समोचरण बनाने में है। मंदिर तो एक ही जगह रह जाता है, समोचरण निकलता है, जहां इंद्र आदेश देगा वहां उसकी रचना होगी। ये चलता फिरता मंदिर है और वह स्थिर मंदिर है। ये एक ऐसा मंदिर भी होना चाहिए भारतवर्ष में, और बहुत सुंदर से सुंदरतम होना चाहिए, और उसमें स्वर्गीय संपदा को लाकर के स्थापित करना चाहिए। जैसे इंद्र ने किया था वैसे ही करने का प्रयत्न करो, हो जाएगा, असंभव है क्या है? फाइव स्टार में तो संभव है सभी, लाखों का खर्च करना, विषय भोगों में खर्च करने के लिए ये अज्ञानी संसारी मोही प्राणी सोचता नहीं, और इसके माध्यम से लाखों का कल्याण होगा। जब तक ये रहेगा तब तक कल्याण करते रहेंगे लोग। एक चलता फिरता मंदिर बनाना है, और ये बन गया ना तो इसको देखने के लिए सभी लोग आ जाएं, ऐसा बनाओ, सबका सहयोग ले लो, एक नहीं, देवलोक में देव संपदा से उन्होंने बनाया, हम मध्यलोक में सबके सहयोग से बनाएंगे। इसमें देव सहयोग देव बन रहा है, तन मन धन से विशुद्धि के साथ सहयोग देव, पुण्य कमाओ, भव्य जीवों के लिए कल्याण का कारण बनो। और यह इसको सब जगह भेजो, और इसके मेंटेन के लिए एक समिति बनाओ अच्छी तरह, क्योंकि इतना मेहनत से करेंगे तो फिर बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, जादू जैसा तो नहीं है, फुक कर दिया तो चला गया और फुक कर दिया तो आ गया। जरा मेंटेन करने के लिए अच्छी व्यवस्था रखेंगे तो बहुत बड़ी धर्म प्रभावना इसके माध्यम से होगी। सब लोग सहयोग दो, थोड़ा 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 करके सहयोग देना, बाहर से भी सहयोग लेना, आप लोग भी सहयोग लो, लेकिन वड़गांव में एक ऐसा समोचरण हो जाए। पहली बार मेरे उपदेश में आ रहा है बनाने के लिए, प्रेरणा देने का अवसर यहाँ पर पहली बार इसलिए मन में आ रहा है, यहाँ लोग विवेकशील हैं, बहुत
बहुत विवेक से काम करते हैं और बहुत लगन से काम करते हैं और बहुत समर्पित हैं, उनको धर्म के प्रति लगाव है, धर्म को जानने लग गए, जानने लग गए। ये बात अलग है कि मिथ्यात्व को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। समूह शरण में बैठे हुए लोग मिथ्या दृष्टि नहीं रहते, उस सम्यक दर्शन की महिमा को इसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में पसराना है। ये पहला प्रयोग है जो इस टाइप का समोषण बनेगा शास्त्रोक्त पद्धति से। हम तो केवल निर्देश दे सकते हैं कैसा बनाना चाहिए, ग्रंथ में इसका वर्णन है कैसा बनाना चाहिए। तिलोयपन्नति नामक एक ग्रंथ है, उसमें एक चैप्टर ही है समोषण का, उसमें क्या क्या होता है एक चैप्टर है, एक पाठ, उसमें पढ़ो क्या क्या है, उसको बनाओ, पढ़ो बनाओ, पढ़ा बनाओ। एक बन गया तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। पंचम काल में समोषण देखने का पुण्य साक्षात मिलने लगा, लेकिन बनाना ऐसे ऐसे बनाना ऐसा कहीं ना हो, बनाना ऐसा ही चाहे धन कितना लगे उसमें। चलता फिरता समोषण, स्थायी समोषण तो कई जगह लोग बनाते हैं, लेकिन देखने के लिए वहां दौड़ना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा जिस देश में जाएगा आसपास के लोग इकट्ठे होकर के इसका लाभ लेंगे। ऐसा चलता फिरता एक समोषण, चलता फिरता मंदिर कहो इसको, साक्षात एक कुंतलगिरी में है समोषण, एक बाहुबली में है। लोग जो भी आते हैं, महाराज ऐसा समोषण कहीं भी नहीं है, लोग कहने लगे। बाहुबली में भी है लेकिन ऐसा विमान घूमते नहीं वहां। ऐसा कहते हैं। कुंतलगिरी में भी है लेकिन कमल नहीं घूमता। और यहां देखो तो सही, भगवान स्थिर हैं और कमल घूम रहा, ये क्या जादू, कहां क्या किया इनने, और कमल का नीचा डंडा भी नहीं घूम रहा है और कमल घूम रहा है, क्या किया इन जादू। बहुत सुंदर लगता है। इसके सामने बैठने के बाद देखो नीचे की जो व्यवस्था है इसमें बहुत कमी है। अभी इसमें जो मंदिर हैं, भगवान के मूर्तियां हैं, मानस स्तंभ हैं, ये थोड़े बड़े रूप में हो जाए और साक्षात दिखने लायक हो जाए तो ये कमी दूर हो सकती है। समोषण के अंदर बैठे हुए लोग बहुत छोटे छोटे हैं, 9 इंच के, ये थोड़े से और बड़े हो जाएं और इसका विस्तार भी बड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों अच्छे लग रहे हैं लेकिन जरा टेढ़े मेढ़े बन गए। कमल बढ़िया बन गया है, भगवान भी अच्छे मिल गए चार समान रूप से। कल्प वृक्ष की तो कहना ही क्या है, अशोक वृक्ष बहुत अच्छा लग रहा है। चामर जो हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो भी परिभ्रमणशील हैं। उनको देव लोग लेकर के प्रदक्षिणा लगाते हैं, चामर लेकर के उड़ते हुए देव ऐसा लेकर के आकाश में अधर में उड़ते हैं, वो वहां पर बांधना पड़ा है। और कितने देव रहते हैं, 64 देव रहते हैं, चामर भी 64 चामर लेकर के प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं। 64 चामर चाहिए तो वो अष्ट प्रातिहार में उसकी पूर्ति हो जाएगी 64 चामर। छत्र भी बहुत अच्छे बने, बिल्कुल बढ़िया, उसके वजह से भगवान साक्षात लग रहे हैं। छत्रत्रय सोने के दिख रहे हैं, सोने के छत्रों को और भगवान को देखते समय सोने के भाव ही नहीं आते। उत्साह रखो सहयोग का, बहुत अच्छी तरह से सहयोग देना, सभी जेंट्स भी और लेडीज भी, सभी लोग सहयोग करो इसमें। आपकी जो शक्ति है शुद्ध भाव से, जितने शुद्ध भाव से आप दान करेंगे ना इसके लिए, उतना ही चमकेगा। दक्षिण भारत में समोसरण आचार्य श्री भी देखने के लिए आ जाए एक बार, ऐसा करना है। कैसा बना है ये देखने के लिए, उनके भी भाव हो जाएं और उनके आने तक इसको सुरक्षित रखेंगे, दिखाएंगे उनको भी। लेकिन उनको दिखाने से पहले मुझे दिखाओ तुम लोग का बना कर। हाँ, हमको पसंद पड़ना चाहिए, हाँ, बाद में उनको पसंद पड़ेगा। और सबको पसंद पड़ने के बाद फिर आकर के तुम लोग दीक्षा ले लेना उसमें। कल्याण तो यही होना है, हमारा अंतिम समय यही अगर मरण हो गया तो सार्थक हो गया। सामने गुरु रहे और बाजू में समोसरण रहे, दोनों के बीच में अगर समाधि मरण हो जाए तो इतना बड़ा पुण्य हमारे पास हो तो हो जाएगा, होना तो चाहिए। मरण कहां पर किसका है कुछ गारंटी नहीं रहता। महापुरुष भी जंगल में मर गए, कृष्ण का मरण जंगल में कोई भी नहीं था, जंगल में मरण हुआ। किंतु हम लोगों का मरण यही भावना बहना चाहिए, जहां समोसरण हो, गुरु का सानिध्य हो, वहां हमारा समाधि मरण हो, ये भावना बहना चाहिए। समय हो गया। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से